शांति। आज हम बात करेंगे माया के महाजाल की, माया के चक्रव्यूह की, माया के भूल भलैया की, माया के अलग अलग आकर्षणों की। माया से हम बच्चों की लड़ाई है, और ये जो माया है ये बड़ी जबरदस्त, बहुत तीखी है। आप सबका अनुभव होगा, माया अच्छे अच्छे, बाबा भी कहता है, अच्छे अच्छे महारथियों जो आज बहुत सेवा करते हैं, बाबा जिनका नाम लेता है, नामी ग्रामी बच्चों को भी कई बार पकड़कर अपना शिकार बना देती है। भक्ति में लोग कहते हैं कि माया बड़ी जबरदस्त है, माया किसी को नहीं छोड़ती, ना ज्ञानी को छोड़ती है ना अज्ञानी को छोड़ती है। ज्ञानी को ज्ञान से पकड़ती है और अज्ञानी को अज्ञान से पकड़ती है। संत कबीर ने एक बड़ा अच्छा दोहा लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि माया महाठगनी, माया महाठगनी हम जानी, योगी के योगन पर बैठी, योगी के योगन पर बैठी राजा के घर रानी, राजा के पास रानी बन के बैठी हुई है, पंडा के मूरत पर बैठी, पंडा के मूरत पर बैठी तीर्थ में भय पानी। संतो माया महाठगनी हम जानी, मतलब उनका ये अनुभव था कि माया किसी को छोड़ती नहीं है, माया ने सबको पकड़ के रखा है, किसी को नाक से पकड़ के रखा है, किसी को कान से पकड़ के रखा है, किसी के हाथ पकड़ रखे हैं तो किसी की टांगें पकड़ के रखी है। माया सबको ठग रही है और हम प्यार प्यार से ठगवाए जा रहे हैं। माया सबको लूट रही है और हम लुटवाने के लिए बैठे हुए हैं। किसी को माया नहीं छोड़ती, किसी को लात मार रही है, किसी को घुंसा मार रही है, किसी को मुक्का मार रही है, पर मार जरूर रही है, ऐसा लोग भक्ति में कहते रहे। इतना जबरदस्त माया के लिए लोगों ने कहा कि माया महाठगनी हम जानी। और संगम युग पर भगवान ने हम बच्चों को तैयार किया माया के साथ लड़ाई करने के लिए। सतयुग त्रेता में तो माया होती ही नहीं है, और द्वापर कलयुग में माया का राज्य होता है, उसका प्रभाव होता है, वहां तो उसके साथ लड़ाई करने का मतलब ही नहीं है। केवल संगम युग पर भगवान अपने बच्चों की सेना बनाता है और माया के साथ युद्ध करने के लिए हमें तैयार करता है। दुनिया में तो लोग माया के इतने मुरीद हैं कि माया की पहचान ही नहीं है उनको कि माया कहते किसे, माया की परिभाषा ही बदल दी है। वो लोग कहते हैं कि माया मतलब जिसके पास ज्यादा पैसा है, धन संपदा है, कहते हैं इसके पास ज्यादा माया है, पैसे को माया समझ लिया है। एक तरफ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं माया पैसा है, फिर पूजा क्यों करते हो। अच्छा, कुछ लोगों ने माया स्त्री को समझ लिया, नारी को, बच्चों को समझ लिया, घर बार छोड़ के जंगल चले गए, संन्यास कर लिया। जो नारी घर की शोभा है, जिसके उत्थान से जगत का उत्थान, जिसके पतन से जगत का पतन, उस नारी को माया समझ लिया, जिस नारी से खुद जन्म लिया उसको छोड़ के चले गए, स्त्री को माया। अब बाबा ने कहा नारी नरक का द्वार नहीं, नारी तो स्वर्ग का द्वार भी हो सकती है, वो डेफिनेशन बाबा ने बदल दी। बाबा ने कहा धन माया नहीं है, धन का लालच, धन का लोभ, धन से आसक्ति, वो माया है। उन्होंने कहा स्त्री माया है, बाबा ने कहा स्त्री या नारी माया नहीं है, बल्कि नारी के प्रति दैहिक दृष्टि रखना, विकारी दृष्टि रखना, वो माया है। उन्होंने कहा बच्चे भी माया है, बच्चों को भी छोड़ दिया। बाबा कहता बच्चे तो घर की रौनक होते हैं, बच्चों से मोह रखना माया है। बाबा ने देखो बुराइयों को माया कहा, जो हमें उलझाती हैं, जो भ्रम पैदा करती हैं और हमें धोखे में रखती हैं। तो माया के जो रूप हैं उन्हें हमें पहचानना पड़ेगा। कहते हैं माया बहुरूपी है, हर बार नया नया रूप लेके आती है। जो रूप पहले है दूसरी बार नया रूप, जैसे मिलिटेंट्स होते हैं ना टेररिस्ट, हर बार नए नए तरीके से अटैक करेंगे। कभी टिफिन में बम रख के चले जाएंगे, कभी बैग में रख के चले जाएंगे, कभी साइकिल स्टैंड में साइकिल से बांध के चले जाएंगे ताकि पहचान ना सके। तो माया भी बहुत बड़ी टेररिस्ट है, हर बार नया रूप, नए नाम से नए रूप से आएगी और ऐसे ऐसे सूक्ष्म रूप लेके आएगी कि आप धोखा खा जाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे अगर आप होशियार नहीं हुए, अगर आप योग युक्त नहीं हुए। माया धोखे में डाल देगी, भ्रम में डाल देगी। आपने देखा होगा कि अंग्रेज आसानी से भारत छोड़ के नहीं गए, उनको भगाना पड़ा, आसानी से गए छोड़ के। उसी तरह माया का भी राज चल रहा है, माया आसानी से जाएगी, वो भी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन हमें पता है कि अब उसका राज खत्म हुआ कि हुआ, उसके अंतिम दिन चल रहे हैं और वो माया अब हमें अंतिम विदाई देने के लिए आ रही है। माया के धोखे से बचना है। माया कभी भी शोर मचाकर नहीं आती, दबे पांव आती है, और जब आती है तो सब कुछ लूट के ले जाती है। कोई तिथि नहीं है माया की आने की, कोई तारीख नहीं है, और आजकल तो इतना भभका, इतना पंप एंड शो माया का है दुनिया में कि उसके आकर्षण में कई बार हम योगी आत्माएं भी आ जाती हैं। अब माया के धोखे से अगर बचना है, माया ने जो नकली स्वर्ग रच दिया है, जब भगवान स्वर्ग रचता है तो माया भी एक स्वर्ग बना देती है। वो स्वर्ग है नए नए साधन, नए नए वैभव, मोबाइल, टीवी, कार, घर, सारी चीजें जो दिखती हैं बाहर अट्रैक्ट करेंगी, भरमाएंगी, धोखे में लाएंगी, नकली स्वर्ग लगेगा। उससे बचना है, और उससे बचने का तरीका है माया के धोखे से बचने का, इच्छा मात्रम अविद्या। किसी चीज की इच्छा है ही नहीं हमारी, हमें दुनिया से वैराग है, ना कुछ देखने की ना कुछ सुनने की, देखते हुए भी ना देखें, सुनते हुए भी ना सुने, तब माया के धोखे से बच सकेंगे। और बाबा के, बाप दादा के लव में जितना लीन रहेंगे उतने दुनिया के माया का जो प्यार है उसके अट्रैक्शन से बच सकेंगे। बाबा ने कहा याद और सेवा का डबल लॉक लगा के रखो तो माया आपके गेट के अंदर आ नहीं सकती। अपने आप को बिजी रखो हमेशा, या तो याद में या सेवा में। खाली आदमी के पास हर कोई आके बैठ जाता है, जो बिजी है काम कर रहा है, कोई आ भी गया कहेगा ये तो अपने में मस्त है, भाग जाएगा। तो ये सावधानियां हम अगर बरते हैं तो माया से बच सकते हैं। और कुमारों के ऊपर तो माया की खास नजर रहती है। जब भी आप अपने नियम और मर्यादाओं की लकीर को तोड़ेंगे माया के अट्रैक्शन में आ जाएंगे। रामायण में सीता कब शोक वाटिका में गई, कब उसे धोखे से उसने वो जो हिरन था, सोने के हिरन के आकर्षण में पहले आई, लालच आया, भूल गई, परखने की शक्ति कम हो गई कि सोने का हिरन होता ही नहीं है, ये तो मायावी हिरन है, परख नहीं सकी। और दूसरा उसने क्या किया, मर्यादा की लकीर जो लाइन, लक्ष्मण लाइन थी, रेखा थी, उसको क्रॉस किया तो कहां चली गई, शोक वाटिका में, रावण के अट्रैक्शन में फंस गई। रावण भेष बदल के आता है, सोने का मृग मायावी मृग बनाता है, सीता को लगता है कि ये मुझे चाहिए, राम के पीछे लग जाती है कि मुझे ये मृग लेके दो। हम भी बाबा के पीछे लग जाते हैं, दुनियावी चीजें चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बाबा भी राम की तरह हमारी इच्छा तो पूरी कर देता है, जो मांगोगे मिल जाएगा। फिर क्या होता है, फिर वो मायावी मृग राम की आवाज लगा के कहता है कि हे लक्ष्मण बचाओ बचाओ। तो सीता को लगता है कि राम के ऊपर कोई मुसीबत आ गई है, आपदा आ गई है, वो लक्ष्मण को भेजती है। लक्ष्मण को लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई ना कोई गड़बड़ है, पर सीता उसके साथ भी जबरदस्ती करके उसको ऑर्डर देती है कि उसकी हेल्प के लिए जाओ। लक्ष्मण जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींच के जाता है कि इसकी अंदर रहना। लक्ष्मण रेखा मतलब लक्ष्य में मन को लगाए रखना, लक्ष्मण। लेकिन सीता रावण के रूप को नहीं पहचान पाती, रावण सन्यासी साधु बन के आता है और भिक्षा मांगता है और वो धोखे में आके लकीर क्रॉस कर देती है। तो हम लोग भी जब नियम मर्यादाओं की लकीर को तोड़ते हैं तो किसके वश हो जाते हैं, माया के, रावण के अधीन हो जाते हैं। अब माया की कौन सी लकीर है, रावण की जेल से बचने के लिए, शोक वाटिका से बचने के लिए कौन सी लक्ष्मण रेखा में रहना है, वो बाबा ने कहा हुआ है, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल, वो लक्ष्मण रेखा। तो ये जो माया का जाल है, भूल भलैया है, ये जो चक्रव्यूह माया रचती है, इसका तोड़ हमें आना चाहिए। जो जो हम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ने लगते हैं, आगे ज्ञान मार्ग में चलते हैं, अनेक रुकावटें, अनेक बातें, अनेक परिस्थितियां ऐसी आती हैं जो हमें गुमराह करने की कोशिश करती हैं, जो हमें भटकाती हैं, अगर उनका निवारण करने की, उनको समझने की योग्यता, ज्ञान हम में ना हो, अगर ज्ञान हो पर ज्ञान पूरा ज्ञान ना हो, अर्ध ज्ञान हो, हाफ ट्रुथ हो, तो कई बार हम ब्राह्मणों की स्थिति, हम ब्राह्मणों की हालत महाभारत में वर्णित उस अभिमन्यु की तरह हो जाती है, जो अर्जुन का बेटा था, महारथी था, जो चक्रव्यूह के अंदर जाना तो जानता था लेकिन चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान उसे नहीं था, इसलिए वो अंदर गया, बाहर नहीं आ सका, कौरवों के द्वारा अंदर मारा गया और वीरगति को प्राप्त हुआ। अकेला गया, अर्जुन भी साथ नहीं था, इसलिए धोखे में आया, आधा ज्ञान था। अब हम अपने आप से पूछे, क्या हम चक्रव्यूह भेदने के लिए तैयार हैं माया का, क्या हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है माया के एक एक चीज की, एक एक, वहां सात दरवाजे दिखाते हैं चक्रव्यूह के, सात द्वार, वो सात द्वार कौन कौन से हैं, आज हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे और कैसे उन चक्रव्यूह को हमें भेदना है, चक्रव्यूह से बाहर निकलना है, वो सारी बातें आज हम चर्चा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चक्रव्यूह से कैसे बाहर आए, कौन कौन सी बातें हैं जो चक्रव्यूह बनके हमें फंसा देती हैं। सबसे पहला द्वार, सबसे पहला चक्रव्यूह, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, ये चारों हमने एक में ही ले लिए। टीवी देखने की आकर्षण, आप कहेंगे हम तो टीवी में केवल न्यूज सुनते हैं, भाई जी हम तो टीवी में केवल क्रिकेट का मैच देखते हैं, हम तो अच्छे अच्छे धार्मिक सीरियल ही देखते हैं। अच्छी बात है, देखिए, लेकिन देखते देखते बीच में अगर आप पक्के नहीं हुए तो माया आपके हाथ से रिमोट कंट्रोल छीन के अपने हाथ में लेके उसे दबा देगी और रंग बिरंगी दुनिया के कई और दृश्य दिखाने शुरू कर देगी और आपकी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति सब खत्म हो जाएगा और माया के अधीन बन जाओगे। शुरू किए समाचार देखने, क्या होली हंस आत्माओं को दुनिया के समाचार, जिनमें केवल लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद एक्सीडेंट मरने जीने की बातें, कहां कितने मरे, किसने किसको धोखा दिया, कहां अत्याचार कहां बलात्कार, यही खबरें हैं। वो खबरें होली हंस आत्माओं को देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए? अच्छा, आप कहेंगे हम क्रिकेट मैच देखते हैं। क्या क्रिकेट मैच देखना, आप कहेंगे उसमें तो कोई भी बुराई नहीं है, यह है बुराई,
मैच ही देख रहे हैं आप। अच्छा, आप मैच देखेंगे, किसी ना किसी का पक्ष लेंगे, ये जीते ये हारे। अब योगी के लिए क्या कहा जाता है, योगी माना सबके लिए संभाव, सबको एक दृष्टि से देखे। वो किसी के लिए सोच ही नहीं सकता कि ये हारे ये जीते, उसके लिए तो सारी दुनिया अपनी है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, भाईचारा, सब भाई भाई हैं, सब एक जैसे हैं। वो भेदभाव कैसे कर सकता है, किसको अपना किसी को पराया कैसे समझ सकता है? कोई जीते कोई हारे, जो अच्छा खेलेगा जीत जाएगा। अच्छा, ये माया अलग अलग रूप में, कभी सीरियल देखने के रूप में आएगी। अब आप बताओ, जो धार्मिक सीरियल भी बनाते हैं, उन लोगों का स्पिरिचुअल कैलिबर क्या है? वो लोग हैं क्या बनाने वाले, जो कलाकार हैं? जीरो। केवल डायलॉग बोलने से कोई धार्मिक थोड़ी बन जाएगा या बन जाएगा। उससे हम क्या सीख रहे हैं? योगी के चार सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। मुझे बताइए, न्यूज सुनना, क्रिकेट मैच देखना, धार्मिक सीरियल भी देखना, कौन से सब्जेक्ट में आता है, आता है या नहीं आता है? तो फिर क्यों हम अपना टाइम मुफ्त के टीवी, जिसे इडियट बॉक्स समझदार लोग कहते हैं, जिसे लोग कहते हैं टीवी की बीमारी से भी खतरनाक है, उस टीवी के सामने बैठ के अपनी क्रिएटिविटी, अपना यूजफुल टाइम क्यों वेस्ट करें? हमारे पास ज्ञान योग के लिए टाइम नहीं, और चीजों के लिए टाइम नहीं, टीवी देखने के लिए टाइम है, इंटरनेट पे चैटिंग, वेब सर्फिंग का टाइम है, इंटरनेट पे बैठे हैं कोई इंफॉर्मेशन लेने के लिए, अच्छी बात है, कई चीजें ढूंढनी पड़ती हैं, लेकिन देखते देखते इंफॉर्मेशन लेते लेते कहीं और पहुंच गए तो सतयुग से एक क्लिक से कलयुग में पहुंच सकते हो, एक क्लिक से ब्राह्मण से शूद्र बन जाओगे। ये चीजें को बुरी नहीं है, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, लेकिन आपके अंदर ताकत होनी चाहिए कि जिस चीज के लिए ये बनी है उसी के लिए इनका इस्तेमाल करना है, मोस्ट पॉजिटिव वे में। बातचीत क्या करनी है, जितनी है करो, नेट में कुछ ढूंढना है, जितना ढूंढना है ढूंढो, रख दिया। लेकिन एक बार हम अंदर से इतने कमजोर कि एक बार देखना शुरू किया, देखते रहे देखते रहे देखते रहे, रात को 10 बजे सोना था, मोबाइल देखने लग गए, इंटरनेट देखने, मोबाइल में भी इंटरनेट आ गया, वो कहते जी फ्री में है इसलिए देख रहे हैं, इंटरनेट फ्री है। एक ने कहा इंटरनेट फ्री नहीं है, हम फ्री हैं, हमारे पास कोई काम धंधा नहीं है इसलिए देख रहे हैं। तो हम इतने फ्री है क्या कि हम इंटरनेट में इधर उधर की बातों के लिए टाइम वेस्ट करें? और इंटरनेट में अच्छी चीजें भी हैं, आप इन्हें सेवा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हुई, थोड़ी सी एक क्लिक इधर से उधर हुई, तो दुनिया भर की गंदगी भी आपको उसमें मिल जाएगी। अब रास्ता आपने चुनना है, एक है कलयुगी विषय विकारों के गंदे नाले में बहना, और एक है ज्ञान के निर्मल गंगा में स्नान करना। कौन सा रास्ता पसंद करना है? कभी आप रास्ते में जाते हुए गंदगी के ढेर को देखते हो? अगर दिख भी जाए तो उसको उसको अंदर जा जाके और उसको सर्च करते हो, वहां से जितनी जल्दी हो भागते हो। तो इंटरनेट में अच्छी चीज ढूंढना देखना अच्छी बात है, लेकिन उसमें जाकर इधर उधर गंदगी में जाकर अपने मन को गंदा करना योगी को शोभा नहीं देता, और ये मृत्यु के समान है योगी के लिए, जीते जी मृत्यु। इंटरनेट का जंजाल आपको कहां से कहां पहुंचा देगा, आपके मन को सबकॉन्शियस माइंड को जैसा देखोगे वैसा बन जाओगे, वैसा ही करने लग जाओगे। कहां चले थे योगी बनने, बन कुछ और रहे हैं। अगर इंटरनेट, टीवी और तीसरा है मोबाइल, इसकी माया से नहीं निकले। अब मोबाइल, पहले तो कंप्यूटर पे इंटरनेट था, जब दिल करे तब बैठते थे, कंप्यूटर सब जगह जाता नहीं था। अब मोबाइल में आ गया तो 24 घंटे मोबाइल पे, जब देखो रास्ते में मोबाइल, मोबाइल में पता नहीं क्या देखते रहते हैं लोग। और चौथा है कौन सा, सोशल मीडिया। सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, जितने भी हैं, यूट्यूब, इनसे सेवा भी की जा सकती है, सेवा के साधन भी हैं, कई चीजें आप इनसे सीख सकते हैं। लेकिन आज हजारों ग्रुप सोशल मीडिया में बने हुए हैं, सवेरे से शाम तक लोग मैसेज पे मैसेज भेजते रहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। पता है भाई गुड मॉर्निंग कितनी बार सुनी, कई लोग हर रोज एक ही मैसेज भेजते हैं, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। कई तो अमृत वेले उठ के हैप्पी अमृत वेला, भाई अमृत वेला बैठ के बाबा को याद करो, आप हैप्पी अमृत वेला क्यों कर रहे हो? जो बाबा को याद करेगा उसका अपने आप ही हैप्पी अमृत वेला हो जाएगा। क्लासेस आ रही हैं, अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं, अच्छा क्या कर रहे हैं, क्लासेस को भी भेज रहे ना, आपने खुद सुनी, बस क्लास आई, कोई मैसेज आया, फॉरवर्ड फॉरवर्ड फॉरवर्ड। एक क्लास घर घर घूम रही है, मोबाइल मोबाइल घूम रही है, सेंटर सेंटर घूम रही है, हर जगह घूम रही है अनाथ बनके, कोई उसे सुन नहीं रहा, सभी उसे फॉरवर्ड कर रहे हैं, सुपर क्लास, सुपर हिट क्लास, पावरफुल क्लास, फॉरवर्ड फॉरवर्ड, सब फॉरवर्ड करते जा रहे हैं, सुनने का किसी को टाइम नहीं, सोच रहे दूसरे का कल्याण हो जाए, अपना कल्याण किया नहीं, दूसरे के कल्याण के बारे में सोच रहे हैं, और दूसरा भी सोच रहा है कि वो भी बिना सुने दूसरे को फॉरवर्ड कर रहा है कि शायद तीसरे का कल्याण हो जाए। यूज करो, लेकिन पहले अपना भला करो, अपने लिए ये साधनों हम के हम गुलाम ना बने। केवल और केवल जितने टाइम के लिए आपने यूज करना है, 5 मिनट 10 मिनट यूज किया, स्विच ऑफ करके रख दो, सारा दिन उसकी गुलामी बन के रहना, बार बार देखना। कई बार हमें भी आदत पड़ जाती है, बार बार देखते क्या हुआ, कोई अपलोड की चीज शेयर की, कितने लाइक मिले, कितना टाइम उसमें जा रहा है, इतने में तो बाबा को याद करो। मतलब माया की गुलामी, माया के जंजाल ऐसे हैं जो कई बार नहीं पहचाने जाते और हम माया के अधीन बन जाते हैं। हर बार नया रूप लेके माया आती है, आप देखेंगे। अब महाभारत के युद्ध में केवल अर्जुन को पता था चक्रव्यूह से बाहर आने का ज्ञान, अभिमन्यु को आधा ज्ञान था। हमें अभिमन्यु नहीं बनना है, क्या बनना है, अर्जुन। अर्जुन बनेंगे तो माया के चक्रव्यूह को भेद सकेंगे और विजयी बन सकेंगे। अर्जुन कौन था, उसके दो गुण थे, एक तो उसके मन और बुद्धि हमेशा लक्ष्य के ऊपर केंद्रित थे, उसे नजर उसकी निशाने पे रहती थी, फोकस्ड। अर्जुन मीन्स फोकस्ड, हम भी अपनी लक्ष्य पे नजर रख के, क्या किसके लिए मोबाइल इंटरनेट यूज करना है, टीवी देखना है, बस सेवा का जो लक्ष्य है उसको सामने रख के उतनी देर के लिए यूज करना है। दूसरा अर्जुन मतलब जिसने भगवान को अपना साथी और सारथी बनाया था, हमें भी भगवान को अपना साथी बना के उसे याद करते हुए इन चीजों का इस्तेमाल करेंगे तो ये माया बनके हमें परेशान नहीं करेंगी। तो ये था माया का पहला चक्रव्यूह, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया, माया का दूसरा चक्रव्यूह। एक दौर क्रॉस करो, दूसरे दौर पे दोबारा माया खड़ी है। और ऐसा ही चक्रव्यूह है कि अंदर जाना आसान है, अंदर से बाहर आना मुश्किल। बाहर का रास्ता दिखाई नहीं देता था चक्रव्यूह में, ये भूल भुलैया का खेल है। दूसरा चक्रव्यूह है दैहिक दृष्टि, दैहिक सुख, दैहिक आकर्षण, दैहिक सौंदर्य, देह देखने की आदत, आत्मा देखने के बजाय, दूसरे को ज्ञान नेत्र से देखने के बजाय हम जब देह के ऊपर दृष्टि डालते हैं तो जहां दैहिक दृष्टि होगी वहां देह के सुख, देह के वैभव, देह के भोग, देह की तृष्णाएं, वासनाएं, कामनाएं, देह के सारे आकर्षण और देह का सौंदर्य खींचेगा और आपको पतन की ओर ले जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा सबको किस दृष्टि से देखना है, आत्मा भाई भाई। दैहिक आकर्षण आया, देह खुद को समझा और दूसरे को समझा, सारी की सारी बुराइयां आ जाएंगी। हम योगी लोग हैं, अल्लाह लोग हैं, हमारा जन्म तपस्या के लिए हुआ है, संसार की सुख सुविधाओं के पीछे जाने के लिए नहीं। ये सुख सुविधाओं की जो विलासता है इसके अधीन हम नहीं हो सकते। साधन हम केवल सेवा के लिए इस्तेमाल करते हैं, साधन हमें रास्ते से भटकाने वाले नहीं हो सकते। हमारी मंजिल संसार के सुख, संसार के भोगों को भोगने की नहीं है। संसारिक सुख, लौकिक सुख, दैहिक सुख, ये हमें नहीं चाहिए। अगर इनकी तरफ अट्रैक्शन हुई तो धोखे में आ जाएंगे। क्या धोखा होगा? दैही आकर्षण, किसी ना किसी देहधारी को आधार बनाएंगे, फिर किसी ना किसी देहधारी के झूठे प्यार में फंस जाएंगे, नकली प्यार में फंस जाएंगे। फिर आप कहेंगे ये भाई बड़ा अच्छा है, कोई कहेगा ये बहन जी बहुत अच्छे हैं, इनके साथ सेवा करेंगे। एक है प्यार से सेवा करना, प्यार से सेवा करो कौन रोकता है, एक है किसी के प्यार में फंसकर सेवा करना। फिर प्यार में फंसकर सेवा तो करेंगे, लेकिन किसी के प्यार में फंसकर सेवा करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कोई हमारा साथी नहीं है परमात्मा के अलावा। किसी को साथी बनाने की इच्छा रखी, धोखा खाएंगे, दुख को प्राप्त होंगे, माया भटकाएगी, कोई ना कोई रूप लेके आएगी, परखना पड़ेगा। माया के धोखे से बचना है, देह के कोई आकर्षण नहीं। इस दुनिया में भगवान के अलावा कोई हमारा सगा नहीं है, केवल भगवान ही हमारा साथी है, वही हमारा सहारा है। किसी व्यक्ति को सहारा बनाना, किसी व्यक्ति से दोस्ती करना, उसे उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमारा मार्ग है ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, ना दोस्ती किसी से ज्यादा, ना किसी से दुश्मनी, सब के लिए संभाव, सब हमारे अपने हैं, कोई बेगाना नहीं है। तो ये देहधारियों का आधार, देह के आकर्षण का आधार और देह के सौंदर्य का, जब देह समझेंगे तो देह की ब्यूटिफिकेशन पे ध्यान देंगे, फैशन करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े, गहने, अंगूठियां, चेन पाएंगे, अच्छे जूते पाएंगे, ताकि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। दूसरे को अपने देह की तरफ अट्रैक्ट करना यह भी पाप है। हमें तो केवल रूह का श्रृंगार करना है, रूह को पवित्रता से, गुणों से सजाना है। दैहिक सुंदरता के पीछे हम भागते नहीं हैं। हमें पाउडर, क्रीम, परफ्यूम,
कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, हमें तो आत्मा का श्रृंगार करना है। हमें तो फैशन जो सिंपल रहता है वही सबसे बड़ा फैशन है। हमने तो कलर कपड़े पहने छोड़ दिए, पहनते भी हैं तो थोड़ी बहुत सेवा के लिए जॉब पे पहनते। जब सफेद पहन लिया, सफेद का मतलब कफन, तो अब इसमें फैशन, कई सफेद में भी फैशन करते। जो चीज छोड़ दी, जो चीज गंदी है, ये शरीर मिथ्या है, भ्रम में डालता है, तो इसको श्रृंगार करने की क्या जरूरत। संभाल करनी है, ठीक ध्यान से रखना है, साफ सुथरा रहना है, अच्छे कपड़े पाने हैं, लेकिन टू मच इसको सजाना संवारना, ये भी माया का रूप ही है। तो ये था माया का दूसरा चक्रव्यूह, दैहिक दृष्टि, दैहिक सुख, दैहिक आकर्षण और दैहिक सौंदर्य को बढ़ाना। तीसरा माया का चक्रव्यूह है, माया जब आती है तो हमें लक्ष्य विहीन बना देती है, एमलेस लाइफ बना देती है और दिशाहीन, डायरेक्शन लेस कर देती है। सबसे पहले माया क्या करेगी, आपको आपके लक्ष्य से भुला देगी। हम आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, आए थे मनुष्य से देवता बनने, आए थे आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, आए थे योगी बनने, और यहां कुछ और करने लग गए हैं, भूल गया लक्ष्य, सेवा में व्यस्त हो गए, इधर उधर की बातों में व्यस्त हो गए और भुला दिया किस लिए यहां आए थे, क्या करने के लिए यहां आए थे, क्या है हमारा एम। एम को कभी मत भुलाना, एम भूली माया का चक्कर भी तैयार है, और एम भूलने के बाद आप क्या बन जाएंगे, दिशाहीन, डायरेक्शनलेस। किसी पुराने को, दूसरे को देखेंगे, ये तो इधर जा रहा है, ये उधर जा रहा है, अब मैं किधर जाऊं, ये रास्ता सही वो रास्ता सही, बीच में फंस गए, कहां जाऊं। घोड़े को याद रखना, जो टांगे का घोड़ा होता है ना, उसकी आंखों के आगे बांध देते ताकि उसको ना इधर नजर आए ना इधर नजर आए, नजर आए तो बिल्कुल सामने। हमें केवल सी फादर फॉलो फादर, ना हेयर ना देयर, केवल मंजिल को देखना है, नजर निशाने पे रखनी है। कोई कुछ भी करे वो उसका मार्ग, मुझे वो करना है जो बाबा मुझसे चाहता है, जो मुझे पसंद है, जो सही है, मुझे वही करना है। मुझे सच के रास्ते पे चलना है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना उसके लिए। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर चली जाए, मैंने वही करना है जो बाबा कहता है। और वो सच के रास्ते पे चलने के लिए आपको तपना पड़ेगा, आपको सहन करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है सच के रास्ते पे चलना। जब सहन करना पड़े, तपना पड़े, तो याद रखना, सोना तप के ही निर्मल बनता है। सोने का किचड़ा जब तपाया जाता है, उसको गर्म किया जाता है, तभी उस किचड़ा बाहर निकलता है। तपाया सोने को जाता है, काठ लकड़ी को थोड़ी तपाया जाता, लकड़ी तो जल जाती है। तो अगर आपने सोना बनना है तो लोगों की बातों को सहन तो करना पड़ेगा। किसी ने दादी से पूछा, गुलजार दादी से, कि दादी मैं इतने टाइम से सहन कर रही हूं, कब तक मुझे सहन करना है, कब तक सहन करती रहूं मैं, एक बार, दो बार, तीन बार, सारी उम्र मैं ही सहन करती रहूं। तो दादी ने उसको कहा कि जो सहन करने के लिए कहा है, ये किसने कहा है। वो कहती, बाबा ने कहा है, तो बाबा की आज्ञा है ना सहन करना, कि सहन करना बाबा ने कहा हुआ है, बाबा का कहना, बाबा की आज्ञा, क्या एक बार पालन करनी चाहिए या दो बार पालन करनी चाहिए, तीन बार पालन करनी चाहिए या सारी उम्र पालन करनी चाहिए, बताओ। सारी उम्र पालन करनी चाहिए ना, तो जब तक जीना है तब तक सहन करना है, और बाबा आपकी मदद करेगा। जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे, योग के रास्ते पे चलोगे, बाबा आपके साथी बन के मदद करेगा। बाबा बाप के साथ साथ हमारी मां भी है, पता है? वो मां भी है हमारी। कैसे? ब्रह्मा मां। तो जैसे दुनिया में पिताजी अगर बच्चे को सजा दे, कई बार दे देते ना घर में पिताजी बच्चे को सजा कि आज से तेरा खाना बंद, तूने ये गलती की है, तो मां क्या करती है? मां उसको भूखा रखेगी? मां चोरी छिपे बाप की नजरों से बचाकर भी अपने बच्चे को खिलाएगी, बाप को पता भी लगने नहीं देगी। इसी तरह जो बाबा हमारी मां भी है, वो दुनिया की नजर से बचाकर भी हमारी मदद करता है जब हम सही रास्ते पे चलते। किसी को पता भी नहीं लगने देता कहां से मदद मिल गई, कहां से हेल्प मिल गई, और बाबा हेल्प करके चला जाता है। ऐसा अनुभव आपको कि बाबा ने हमारी कैसे हेल्प की? अचानक कहीं से कोई उम्मीद नहीं थी, पर बाबा ने हमारा काम कर दिया। ऐसी पॉइंट आपकी बुद्धि में आ जाएगी, ऐसा ज्ञान आ जाएगा कि आपकी समस्या सेकंड में भाप बन के उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी समस्या। लेकिन ये तब होगा जब बाबा के साथ आपका संबंध, बाबा के साथ आपका संबंध अच्छा होगा, मीठा होगा, बाबा का दिल जीता होगा। और बाबा से अपना संबंध अगर आपने ठीक रखना है, एक ही तरीका है, योग और पढ़ाई। योग और पढ़ाई पे ध्यान देना है, जो बाबा ने हमें कहा है, सवेरे उठ के योग करना है, मुरली पढ़नी है, मुरली लिखनी है, शाम को भी योग करना है। जो जो बाबा ने कहा, जो इन बातों को पूरा अमल में लाता है, बाबा के साथ उसके संबंध बहुत अच्छे हो जाते हैं। जो इस ज्ञान में आकर भागंती होते हैं, कई बार कुमार भाग जाते हैं, छोड़ जाते हैं, जो लड़खड़ाते हैं, जिनके पांव फिसलते हैं, उसका कारण यही है कि वो सेवा तो की उन्होंने, लेकिन ज्ञान योग पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। ये योग का मार्ग है। बाबा के कार्य में वही सबसे ज्यादा सहयोगी है जो योगी है। योगी होना ही बहुत बड़ी सेवा है, तो इसके पीछे कोई कॉम्प्रोमाइज ना करो। जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। दादियों को देखो, हर रोज मुरली पढ़ती हैं, हर रोज योग करती हैं, उनकी स्टूडेंट लाइफ 80 साल से चल रही है। तो हम तो अभी नए नए हैं, तो हमें पढ़ना भी है, सीखना भी है, और ज्ञान योग करना है। उसके लिए कोई कंप्रोमाइज ना करो, अगर किया तो लक्ष्यहीन दिशाहीन हो जाएंगे, सही डायरेक्शन के बजाय उल्टी डायरेक्शन की तरफ चल पड़ेंगे। और फिर जब ऐसा होगा, माया का चौथा चक्रव्यूह आलस, अलवेलापन और बहानेबाजी के रूप में खड़ा होगा। फिर आलस आएगा पढ़ाई करने में, सवेरे उठने में आलस आएगा। कौन रोज रोज उठे, एक दिन की बात हो तब भी आलस आ जाएगा। कौन क्लास करने जाए, अलवेलापन, आलस अलवेलेपन की नींद में, गफलत की नींद में सो जाएंगे। कर्मठ पुरुषार्थी बनने के बजाय आराम पसंद, सोए रहो, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, अभी तो कहां कलयुग खत्म होने वाला है, बाबा तो कितने सालों से कह रहा है, पता नहीं कब होगा विनाश, अभी तो कर लो जो दिल करता है। अलवेलापन, गफलत, आलस अलवेलापन आया, माया आई, फिर बहानेबाजी का संस्कार इमर्ज होगा। हर जगह कारण बताएंगे, मैंने अमृत वेले योग नहीं किया, ये कारण, मैंने क्लास में नहीं आया, ये कारण, मैंने पुरुषार्थ नहीं किया, ये कारण। बाबा कहता कारण का निवारण करो, बहानेबाजी को खत्म करो, और वो कारण कारण, ये कारण वो कारण, ये बहाना वो बहाना, इसके वजह से उसकी वजह से, ये हुआ वो हुआ, सुनाता रहेगा सुनाता रहेगा, और पुरुषार्थ नहीं करेगा। कारण शब्द के तीन साथी हैं, ऐसे वैसे और कैसे। जब भी हम ऐसे वैसे कैसे करते हैं, बहानेबाजी शुरू हो जाती है, होती है नहीं होती। ये परिस्थिति आ गई, ऐसा वो व्यक्ति कारण बना, स्थान ही ऐसा है। बाबा कहता ना तो परिस्थिति बदलने वाली है, ना वो व्यक्ति बदलने वाला है, ना आपका स्थान बदलने वाला है। केवल बदलना है तो आपको खुद अपने आप को बदलना है। है बात सही है नहीं? हमें बदलना है, हम लगे हैं व्यक्तियों को बदलने में, तो कितनी बड़ी माया का रूप आता है। परिस्थितियां आती हैं हमें पावरफुल बनाने के लिए, पेपर आते हैं हमें शक्तिशाली बनाने के लिए। परिस्थितियों से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। जितना ज्यादा आपका विरोध होगा उतना ही ज्यादा आपकी आत्मा में बल भरेगा, पावर आएगी। इसलिए परिस्थितियों के ऊपर जीत पानी है, बहाना नहीं। जब सतयुग में राजा बनाने का मौका आएगा, बाबा कहेगा राजा बनना है, आप बहाना दोगे? दोगे बहाना जब राजा बनने का मौका आएगा? आप कहेंगे उसको नहीं मुझे बनाओ, मैं ही सुटेबल कैंडिडेट हूं, मैं ही सबसे एबल हूं, मुझे ही मौका मिलना चाहिए। तो ये है माया का चौथा चक्रव्यूह, आलस, अलवेलापन और बहानेबाजी। और पांचवा चक्रव्यूह है माया का पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत, पर संग। झरमई झुगमई, जो बाबा कहता है झगमुई झरमुई, इधर उधर की बातें करना, कहां क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है, उधर क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, ये सारी बातें। पर दर्शन, पर चिंतन, बाबा ने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है, पर चिंतन पतन की जड़ है। आत्मचिंतन उन्नति की सीढ़ी है, कहा हुआ है या नहीं कहा हुआ है? दो युगों तक हम किसको देखते आए? दो युगों तक हम देवताओं को देखते आए, दो युगों तक मनुष्यों को देखते आए, अब अपने को देखना है, किसी को नहीं देखना। दूसरा कुछ भी कर रहा है अपने लिए कर रहा है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? एक बार सुकरात, जो एक फिलोसफर था, दार्शनिक था यूनान का, उसके पास एक व्यक्ति आता है और उसे बताता है कि आपको पता है वो व्यक्ति ने क्या क्या किया, वो व्यक्ति कैसा है, आपको पता है, मैं बताता हूं। सुकरात ने कहा ठहरो एक मिनट, मेरे तीन प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद बताना कि वो व्यक्ति कैसा है। पहला प्रश्न, जो बात तुम बताने वाले हो क्या वो बात तुम्हें यकीन है 100% 100% राइट है, सही है? अगर सही है तो बताओ, नहीं तो नहीं बताओ। वो व्यक्ति कहता मैंने किसी से सुन रखा है, मैं गारंटी नहीं लेता कि 100% सही है या नहीं है। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, जो बात तुम बताने वाले हो क्या वो बात सही है या गलत है, पहले थी कि वो सत्य है या असत्य है, दूसरी कि वो बात सही है या गलत है, अच्छी है या बुरी है, अच्छी है या खराब है। तो वो व्यक्ति कहता जी वो अच्छी तो नहीं है, है तो खराब ही। उसने तीसरा प्रश्न पूछा, जो बात तुम मुझे बताने वाले हो क्या वो बात यूजफुल है, नेसेसरी है, क्या वो बात मेरे फायदे लिए है या नुकसान के लिए है? वो कहता कि फायदा तो उसमें कुछ नहीं है। तो सुकरात कहता फिर वो बात मुझे मत बताओ। इसे कहते ट्रिपल फिल्टर टेस्ट। थ्री फिल्टर टेस्ट, जो बात आप जिसका चिंतन कर रहे हो दूसरे को बता रहे हो वो बात इन तीन स्टेजेस से जो गुजर के पास हो, जो 100% सही हो, जो बिल्कुल अच्छी हो, जिसमें हमारा फायदा हो, वही बात दूसरे को बतानी चाहिए। अन्यथा ना वो बात बताओ, ना शेयर करो, ना उसके ऊपर सोचो। हमें देखना ही नहीं है दूसरा क्या कर रहा है, कहां क्या हो रहा है, किस घर में क्या हो रहा है, किस सेंटर पे क्या हो रहा है, उस भाई के साथ क्या हुआ, उस बहन के साथ क्या हुआ, हमारे पड़ोस में क्या हुआ, ये हमारा विषय नहीं है। योगी वो जो संसार के लिए आंख बंद करके चले, जिसका संसार की किसी बात में नो इंटरेस्ट, कहीं आंख डूबे नहीं, वही योगी है। नो पर चिंतन, नो पर दर्शन, नो पर संग, किसी का जो इधर उधर का फालतू संग है, गड़बड़ वाले जो लोग हैं, जो ज्ञान योग में ठीक नहीं है, उनका भी संग नहीं करना है। करते तो नहीं, करते हैं संग, सो तो नहीं गए, जो एक्टिव है हाथ ही लाओ, बाकी सो गए, आपके आसपास को सोया उसको जगाओ, नहीं तो उसको तो माया यहीं आ गई। अभी मनु ने आधा ज्ञान सुना था, जब वो मां के पेट में था तो ज्ञान सुनाया जा रहा था अर्जुन के द्वारा उसकी मां को, वो सो गया, मां सो गई, मां सो गई तो उसको आधा ही ज्ञान मिला, इसलिए फंस गया। तो ये माया का संपूर्ण ज्ञान होना बड़ा जरूरी है। तो पर संग, दूसरे के संग में आके दूसरा कहेगा मैं तो सोया रहता हूं, आप कहोगे ये भी सोया रहता है, मैं भी सो जाता हूं, काहे क्यों जाना क्लास में, वो कहेगा मैं तो ऐसा करता हूं, उसके संग का प्रभाव पड़ा, आप भी गिरे, वो भी गिर रहा है, आप भी गिर रहे हो। आपने संग उसका करना है जो अच्छा ज्ञानी योगी आत्मा हो, जिससे आपकी अपलिफ्टमेंट हो, तो संग से अपनी संभाल करनी है, इधर उधर की फालतू बातों से संभाल करनी है। और छठा जो चक्रव्यूह है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक द्वार क्रॉस करना पड़ता है आगे बढ़ते हुए, वो है अफवाह, र्यूमर्स, अनुमान और संदेह, शक करना, अफवाहें फैलाना। दुनिया में कई बार ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनके पास कोई काम नहीं होता, उनका काम होता है अफवाहें फैलाओ, किसी के बारे में बात 10% भी नहीं होगी, बात कुछ और होगी, वो अफवाह फैला देंगे, अरे आपको पता है वो ऐसा है ऐसा है ऐसा है। दूसरा उसमें और मिर्च मसाला डालेगा और वो बात होगी कुछ और, बन कुछ और जाएगी। उन अफवाहों से सावधान रहने की जरूरत है, बात कुछ भी नहीं होती, वो कहते अश्वत्थामा मारा गया, कौन सा मारा गया, पर अफवाह फैला दी गई महाभारत के युद्ध में, द्रोणाचार्य ने सोचा मेरा बेटा मारा गया था हाथी, गड़बड़ होगी। तो हम लोगों का मन कमजोर होता है, उस कमजोर मन में अफवाहों का असर कई बार हो जाता है, हमें वो सच लगने लग जाता है, इसलिए सुनो ही नहीं। जो बात आपके काम की नहीं है, किसी के पुरुषार्थ के गिरने की बात क्यों सुनो, किसी के अपलिफ्टमेंट पुरुषार्थ, अच्छे पुरुषार्थी की बात सुनो। अफवाह तो यही होगी ना कि वो गिर गया, उसने ये कर दिया, उसने ये उल्टा काम कर दिया, तो उल्टे ही उल्टी खबर सुनोगे तो आप भी उल्टे बन जाओगे। तो अफवाहों से सावधान रहना है। दूसरा है अनुमान, ऐसा हुआ होगा, उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ऐसा किया होगा, अनुमान लगा रहे। अनुमान का भी हनुमान पूंछ बड़ी लंबी हो जाती है, हुआ कुछ भी नहीं है, सोच सोच के ऐसा हुआ होगा। और जहां अनुमान है वहां फिर शक पैदा होता है, डाउट पैदा होता है, संदेह पैदा होता है। संदेह होता है फिर अपने सिस्टम के प्रति, अपने सीनियर्स, यज्ञ के जो सीनियर्स हैं, यज्ञ के प्रति संदेह, ये भी ऐसा करते हैं,
यहां भी ऐसा होता है, यहां भी ये हो रहा है, और हम सोच सोच के अंदर से खोखले हो जाते हैं। फिर लगता है जब सारे ही ऐसे हैं तो मैंने क्या करना, अच्छे बन के खुद भी गिर जाते हैं, पतन की ओर चल पड़ते हैं। जब डाउट दूसरे के ऊपर पैदा हो जाता है, नो डाउट, किसी के ऊपर कोई डाउट नहीं, बस कोई संदेह नहीं, कोई शक नहीं, जो है जैसा होना चाहिए वैसा ही है, कुछ भी गलत नहीं है, गलत है हमारी समझने की पावर, तब हमें समझ नहीं आ रहा, हमने सही सही समझना है। और लास्ट चक्रव्यूह जो तैयार बैठा रहता है, जो सबसे खतरनाक है, छह चक्रव्यूह तो अभिमन्यु ने भेज दिए थे, सातवें में जाके फंस गया था और मारा गया था। सातवां चक्रव्यूह है अभिमान का, निराश हो जाना या अभिमान में आ जाना, निरुत्साहित हो जाना। कई बार हम निराश हो जाते हैं, उमंग उत्साह खत्म हो जाता है, जब दूसरे को देखते हैं ना, नीचे वाले को देखेंगे तो अभिमान आएगा, ऊपर वाले को देखेंगे तो निराश हो जाएंगे। कभी भी उमंग उत्साह खत्म नहीं होना चाहिए ब्राह्मण जीवन में। उमंग उत्साह खत्म हुआ, डेड बॉडी की तरह बन जाओगे, जीवन सूखी लाश बन जाएगी। और उसका तरीका सिंपल सा है, कौन सा, उमंग उत्साह के लिए कुछ ना कुछ नया करते रहो, कुछ ना कुछ न्यूनेस, नवीनता आपके जीवन में आनी चाहिए। मुरली पढ़ो, उससे नए नए पॉइंट निकालो, नई नई चीजें लाओ, सेवा के नए नए तरीके ढूंढो, मनन चिंतन योग के नई नई चीजों का अभ्यास करो, हर बार नवीनता होनी चाहिए ताकि हमारा उमंग और उत्साह बना रहे। और अभिमान, जिसका अभिमान जिस व्यक्ति को आ गया तो क्या होगा, अभिमान पाप का मूल है, अभिमान से बड़ा नुकसान है। बाबा का बनने के बाद अनेक अचीवमेंट्स आपको होंगी, अनेक उपलब्धियां आपके हाथ में आएंगी, सैकड़ों प्राप्तियां होंगी, हर चीज आपको मिलेगी, आपके अंदर अनेक गुण, अनेक विशेषताएं, अनेक योग्यताएं आएंगी, बोलने की योग्यता आएगी, लिखने की योग्यता आएगी, सेवा करने की योग्यता आएगी। आप एक बार किसी को अच्छा ज्ञान सुनाओ, एक बार कहीं लेक्चर दे दो, 500 लोग आपके आगे नतमस्तक होंगे। लेकिन भाइयों, कभी अभिमान में मत आना, मिलेगा सब कुछ, बाबा सबको देता है, सब कुछ मिलेगा आपको, दुनिया से ज्यादा मिलेगा, आपकी पालना राजकुमार राजकुमारियों की तरह करेगा ब्रह्मा कुमार बनने के बाद, सब कुछ मिलेगा, पर उस चीज का अभिमान कभी ना आए। अगर अभिमान जीवन में आ जाए तो हमारी ये जीवन यूजलेस हो जाती है। उस व्यक्ति की योग्यताएं, विशेषताएं और गुण सेवा में प्रयोग में नहीं आते जिसके पास अभिमान आ जाता है। ये याद रखें कि ये गुण, ये विशेषताएं, ये योग्यताएं प्रभु की देन है। ये सब कहां से मिली है हमें, बाबा के द्वारा मिली हुई है, बाबा के कार्य में इन्हें इस्तेमाल करना है, और बाबा को समर्पित होके, बाबा को इन गुणों को समर्पित करके इस्तेमाल में करना है, अभिमान में आके नहीं। ये मेरी हुनर नहीं है, ये मेरी कैपेबिलिटी, मेरी एबिलिटी नहीं है, ये उसकी दी हुई है, उसकी चीज, उसी के काम में, उसी की सेवा में निस्वार्थ भाव से हमने करनी है, अभिमान से दूर रहना है। तो ये सातों के सातों चक्रव्यूह आपने पहचानने हैं। किसी भी चक्रव्यूह में नहीं फंसना है, किसी भी एक द्वार में फंस गए, अभिमन्यु की तरह वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे। हरेक द्वार को, हरेक चक्रव्यूह को पहचान कर और उससे बाहर निकलना है। माया उलझाएगी, माया परेशान करेगी, लेकिन आपने कहीं भी फंसना नहीं है, किसी भी जाल में उलझना नहीं है, माया जीत बनकर दिखाना है। बनकर दिखाएंगे या नहीं? पता जो कहते हैं हम चक्कर व्यू पे जीत पाएंगे, वेरी गुड, सब हाथ उठा रहे। बाबा ऊपर से देख रहा है, साथ में माया भी देख रही है। माया भी क्या करती है ना, वो भी रोकती है, वो कनेक्शन काट देती है। माया जहां से आपको पावर मिलनी है ना, वह योग और ज्ञान पढ़ाई, वहां मुरली, वहां से आपका कनेक्शन काट देगी। और पावर लेस जैसे आप होंगे, फिर हमला बोलेगी और आपको अपना चंगुल में फंसा लेगी, पूरा का पूरा निगल जाएगी। बाबा कहता पूरा का पूरा हड़प कर जाएगी। बाबा को भूले, ज्ञान योग मुरली पढ़ाई को भूले, माया खा जाएगी। इसलिए इसमें कभी भी आलस तलविला नहीं कर बनना है, पक्के योगी पक्के स्टूडेंट बाबा का बनना है। ओम शांति, थैंक यू वेरी मच।